கருத்து குலம் கனப்பில் விஷலசாரம் கோபிகுமாரம் இளம் ஸ்ரீபிபூஷிதகராமயனீரதாபாத் பீதாங்கராதன்மகுந்தபலாதரோஷ்டாத் பூரமேந்து சுந்தர முகாதரவிந்த நேத்ராத் கிருஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத்வமஹம் ந ஜானே ஸ்ரீஹரிஹ. दो तीन विषयों पर कहने के लिए कुछ सज्जनों की ओर से भिन्न भिन्न लोगों की ओर से आज्ञा मिली है. उन्हीं में से एक या दो विषयों पर कुछ कह देना है. किसी ने पूछा अपने नियम में एक चीज है कि दूसरे के हक का पैसा जानबूझकर नहीं लेना. इस पर एक सज्जन ने पूछा है कि ये क्या बात है, दूसरे का हक क्या है. तो आज के जमाने में तो इस बात पर, दूसरे के हक की बात पर कुछ समझना ही बेकार है. जो अपने ना सके वो अपने हक का नहीं बाकी सारा अपने हक का. आज तो ये चीज है कि किसी प्रकार से भी हम ले सकें वो सारा हमारे हक का, न ले सकें न पा सकें उपाय नहीं, वो अपना दूसरे का हक का हो गया. आज तो हमारी ये हंसने की दशा नहीं है, रोने की दशा है. एक ऐसी कथा आती है कि एक कोई राजा रहे सत्संगी अच्छे पुरुष. एक दिन बात किसी संत से हो रही थी, भाई हक क्या चीज है, हमें कहीं हक की रोटी मिल जाए भाई पवित्र. तो संत ने बताया कि तुम्हारे शहर में अमित मोहल्ले में एक बुढ़िया रहती है. वो बुढ़िया है तो वही गरीब, पर वो बुढ़िया अपने हक का खाती है, उसकी रोटी हक की होती है, तुम वहां जाओ. राजा बड़े गुणग्राही थे, उत्सुकता थी जानने की, हक समझने की. तो पहुंचे बुढ़िया के पास. बुढ़िया से बोले, मैया मैंने सुना है कि तुम हक का खाती हो और तुम्हारे यहां हक की रोटी मिल सकती है, तो मैं उसे मांगने आया हूं, अगर दे दो हक की रोटी पवित्र हो जाऊंगी. तो बुढ़िया ने कहा, देखा एक रोटी मेरे पास है जरूर, पर वो आधी हक की है आधी बेहक की, पूरी हक की आज नहीं है. कहा, ये पूरी हक की और आधी हक की का क्या अर्थ है. तो बुढ़िया कहती है कि मैं सूत काट कर उसे बेचती हूं, जितने मजदूरी के पैसे मिलते हैं उनसे मैं अपना काम चलाती हूँ. मैं समझती हूँ मेरे हक का है, मेहनत करके किसी दूसरे पर किसी प्रकार का कोई बोझ न डालकर मेहनत का पैसा मैं कमा कर खाती हूँ, काम चलता है. एक दिन एक जुलूस जा रहा था, शाम हो गई थी, मुझे दिया जला लेना चाहिए था. उधर से जुलूस निकला, उसमें मशालें थी, तो मशालों की रोशनी यहां पड़ रही थी, तो मैं दिया जलाया नहीं, उस रोशनी में मैंने सूत काट लिया. जितना सूत मैंने उस रोशनी में काटा उतना मेरे हक का नहीं, ये बेहक का है. तो राजा को समझ में आया कि हक की चीज हमारे यहां तो ऐसी बहुत चीज. महाभारत की एक कथा है, हमारे दो बड़े भारी महर्षि हुए स्मृतिकार, बड़े कट्टर, इतने कट्टर जो जिन लोगों ने समय पर न पहुंचने के लिए दंड रखा था, हम सब भज के यहाँ तेल के कड़ाहे में डाल के डाल दिया गया निश्चित नाग, तो जैन में सुवेद की कथा है, सुधनिया को डाला गया था उसमें। तो इतने बड़े कटे थे शंख और लिखित, दोनों में बंटवारा हो गया। जरा सुनिएगा ध्यान से, आज का युग और उस जमाने की चीज। शंख और लिखित दोनों भाइयों का धन का मकान का जमीन का था ही क्या, जो कुछ था बंटवारा हो गया। दोनों भाइयों में बहुत बड़ा प्रेम, एक दूसरे के लिए प्राण देने को प्रस्तुत। बंटवारा हो गया तो क्या हुआ भाई ये है। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई के बगीचे में से एक पेड़ से एक फल तोड़ लिया, खा लिया। जब बड़े भाई आए तो उनके पास जाके कह दिया कि मैंने आज आपके बगीचे में से एक फल तोड़ के खाया। बड़े प्रसन्न हुए, भाई ने खाया और क्या चाहिए। लेकिन ये तो भाई को चाहते हैं धर्म में अत्यंत प्रतिष्ठित जीवन वाला भाई, फल खाने में आसक्त नहीं। वो मान करके कह करके चाहे सारे के सारे फल ले ले, त्याग में कोई बात नहीं, प्रेम में कोई भेद नहीं। लेकिन वो तो स्मृतिकार है ना, लोगों के धर्म सिखलाने वाले। तो पूछते हैं भाई से, शंख ने पूछा लिखित से, अच्छा बताओ भैया, तुमने हमारे हमसे बिना पूछे जो पेड़ में से फल तोड़ के खा लिया, इस क्रिया की क्या संज्ञा होती है, इसका क्या आराम दिया जाए। स्मृतिकार है ना, पूछते हैं कि तुम्हारी इस क्रिया का नाम क्या है। तो सोच के कहा, महाराज चोरी, बंटवारा हो चुका, आपकी संपत्ति है, बिना आपसे मांगे बिना लिए अपनी इच्छा से ले लेना चोरी है। तो कहा, फिर चोरी का दंड क्या होता है, उसी से पूछते हैं। कहा, चोर के हाथ कटवा दिए जाए, वो दंड होता है। तो जाओ हाथ कटवा के आओ। कितनी भीषण बात है, आज के युग का आदमी इस बात को समझ नहीं सकता कि एक फल अगर उसने खा लिया तो प्रकारांतर से उसको फुसला उसके बेचारे के हाथ कटवा देना चाहता है। कितना निशंस है, कितना निर्दयी है, कितना अत्याचारी है, कितना स्वार्थी है, ये सब बात हम लोग आज कह सकते हैं। पर लिखित ने ये बात नहीं कही। लिखित ने सोचा अपने मन में कि भाई का मुझ पर बड़ा उपकार, मुझे धर्म के पथ से जया भी विचलित होते भाई देख नहीं सकते, मुझे बचाते हैं, कितना बड़ा उपकार। उपकार मानकर हाथ कटवाने के लिए मुनि जाते हैं राजा के पास। राजा से जाके कहते, स्वयं चोरी स्वीकार करते हैं। कहा, मैंने चोरी की है, अपने भाई के यहाँ मैंने फल चुराया है, आप मेरा हाथ कटवा दो। राजा ने बातें सुनी, कहा, भाई कोई बात नहीं है, भाई से कह दो। कह देने से क्या होता, मैंने चोरी की ना। तो कहा, नहीं ऐसी बात नहीं। तो कहा, तुम कौन हो ये कहने वाले। स्मृतिकार हम हैं, कानून बनाने वाले हम हैं, तुम्हारा काम है कानून का पालन करना कराना, तुम अपना काम करो, तुम कानून के बीच मत दबो। राजा ने हाथ कटवा दिए। लिखित के हाथ कट गए, कटे हाथ खून बह रहा है, नीले हाथ है, पूजा हो रही है और मन में बड़ा हर्ष है और भाई के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का भाव है कि भाई ने मुझको बचा दिया, आज पाप से बचा दिया। वापिस आ गया भाई, बड़े प्रसन्न, मन में बड़ा दुख हाथ कट गए इसका, अपने हाथ कटे हैं, लिखित के हाथ कटे, शंख के हाथ कटे हैं, बड़ी पीड़ा उनके मन में भाई के है, पर बड़ा संतोष है कि मेरा भाई कितना ये धार्मिक है कि मेरे कहने से इसने अपनी भूल मान ली, भूल उसके सामने आ गई और दंड ले लिया। प्रातः काल हुआ, श्राद्ध था पिताजी का, लिखित ने कहा और शंख ने कहा जाओ भैया तर्पण करके आओ। अब भाई की आज्ञा जानते हैं, हाथ तो यही है, तर्पण कैसे हम अंजलि दी कैसे जाएगी। गए नदी पर, गए जो ही नदी में हाथ डाले हाथ जो के तुम्हारे, ये हक हक। भीष्म के बुद्धि में भ्रम हो गया, कैसे हो गया। एक कथा जगह आती है कि महाराज भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए धर्मोपदेश कर रहे थे, बड़ी सुंदर सुंदर बातें कह रहे थे, आर्त को किस प्रकार बचाया जाए, कैसे रक्षा की जाए, ये था प्रसंग। द्रौपदी को हंसी आ गई, द्रौपदी को हंसते देखकर भीष्म ने देख लिया। भीष्म ने कहा बेटी हंसी क्यों। द्रौपदी सकुचा गई, बताना नहीं चाहती, नहीं दादाजी ऐसे ही। पर नहीं भाई, कुल गधियां जो होती हैं वो बेकार नहीं हंसा करती। ये कुल गधियों का लक्षण होता है कि बिना काम हंसती नहीं। तुम्हारी हंसी में कोई रहस्य बताओ। कहा दादाजी बात तो है पर संकोच होता है, बनी बेटी ने संकोच बताओ। तो मुझे इस बात पर हंसी आ गई आपके उपदेश पर कि आज आप इतना भारी उपदेश कर रहे हैं, और जिस समय मेरी साड़ी खींची जा रही थी और मैं रो रही थी दादाजी मुझे बचाओ दादाजी बचाओ, उस समय ये ज्ञान कहाँ गया था। मैं समझती हूँ कि आपने पीछे सीखा है। मुझे आपके इस ज्ञान को देख कर हंसी आ गई। भीष्म के आंखों में आंसू आ गए। भीष्म ने कहा बेटी तुम सच कहती हो, उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, पर मैंने पीछे सीखा उसे बात नहीं है। जानता पहले था पर दुर्योधन का अन्न खा रहा था, वो अन्न देहक का अन्न था, अन्याय उपार्जित था। पांडवों के स्वत्व को छीन कर उसने अपना आधिपत्य किया था, वो देहक का अन्न था, उसने मेरी बुद्धि बिगाड़ रखी। अब वो इस रण में उसका बना हुआ सारा खून निकल गया, बह गया, अंतकर्ण पवित्र हो गया, ज्ञान फिर जाग उठा। अब मैं तुमसे कहता हूं ये हक की बात, किसी का भी किसी प्रकार से भी अपने पास हक आ जाए तो ये मानते थे पहले जमाने के लोग कि ये घर में विष आ गया। ये आज तो हम अपने को उन्नत मानते हैं, और यही दुर्दशा इसलिए है हमारी कि बुद्धि हमारी तमसा छन्न हो गई है। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि हिसा पार्थ तामसी, भगवान ने कहा जब उल्टी बुद्धि होती है, तमसा छन्न बुद्धि होती है, तब सब कुछ उल्टा दिखता है। तो आज हम गिर तो रहे हैं, हमारा नैतिक पतन हो रहा है, पर आज का समाज, आज का नेता, आज का अग्रगण्य पुरुष कहता है कि हम उन्नत हो रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है, उत्थान हो रहा है। ये तो हक वाले की बात। तो जहां तक बने जानबूझकर दूसरे के हक का कोई पदार्थ भी नहीं लेना चाहिए, ये उनके प्रश्न का उत्तर है। दूसरी बात ये जरा और ढंग की बात, बिल्कुल इससे विपरीत है। कल या परसों मैंने कहा था कि भाई विशुद्ध प्रेम के राज्य में सुख भोग, अपना सुख भोग भी प्रेमास्पद के सुख के लिए होता है। इसी पर आज एक सज्जन ने मुझको लिख कर दिया कि ये बात ठीक समझ में नहीं आई, फिर से बताओ। तो उस दिन बता तो दी थी लेकिन संक्षेप में फिर से कह दी जाती है। जैसे एक कोमल बिछौने पर हम सो रहे हैं, बड़ा सुंदर मखमली बिछौना है और उससे हमारे प्रवींद्रिय को बड़ा सुख मालूम हो रहा है, बड़ी मुलायम चीज है, अच्छा लग रहा है, उसमें सुख की अनुभूति होती है। बहुत ख्याल करके देखिएगा, सुख की अनुभूति होती है। हमारी जो ये त्वक है, चमड़ी है, इसके साथ स्पर्श हो रहा है कोमल गद्दे का, उससे सुख हमको मिल रहा है। पर उस प्रेमी के चित्त की विचित्र दशा है कि उस सुख भोग के समय भी उसका मन उस सुख भोग में नहीं रहता। वो उस समय देखता है अपने प्रेमास्पद के चित्त की ओर, उनके मुख की ओर, कि मेरी सुख भोग में उनको सुख है क्या। उनको सुख यदि नहीं है तो ये सुख भोग उसके लिए कोई वस्तु नहीं, त्याग देगा। ये दुख में तो आदमी इस बात को समझ लेता है कि भगवान दुख देते हमारे कल्याण के लिए, उनको सुख होता है तो हम दुख को सुख मान के भोग लें। पर सुख को सुख न मान के भोगें, ये बड़ी विचित्र चीज है, ये समझ में आनी बड़ी मुश्किल है। हमें सुख प्राप्त हो रहा, हम खा रहे हैं, हमारे जीभ के द्वारा हमें स्वाद प्राप्त हो रहा है, पर स्वाद सुख का ग्रहण वो प्रेमी तभी करता है जब उस स्वाद सुख से उस प्रेमास्पद को सुखी होता देखता है, जानता है, अनुभव करता है। वो तो पहचान लेता है प्रेमी जो है, ये अभी हम लोग प्रेमी नहीं है ना, हम लोगों को प्रेम राज्य की बातों का पता नहीं, तो सुनी सुनाई मैं कहता हूँ। इसलिए वो पूरी बात तो तब आए कि जब वो स्वयं उसके साथ घटे। प्रेम का लक्षण बताया है नारद जी ने, नूका स्वादनवत। प्रेम का कैसा स्वाद है, उसमें क्या सुख है, कैसा है वो, तो कहा गूंगे के स्वाद की तरह है। गूंगा जिस प्रकार से कह ही सकता, अनुभव करता, जीभ से चखता है, स्वाद का अनुभव करता, कह तो हम नहीं सकते, क्योंकि जिह्वा के द्वारा जिस रस की अनुभूति होती है उस रस का वर्णन करने के लिए न शब्द है और न जीभ में शक्ति है। मिश्री खाते हैं, गुलकंद खाते हैं, चीनी खाते हैं, शहद चखते हैं, अब इनमें सब मिठास है, कहेंगे भाई बड़ा मीठा था, उससे ये अच्छा, हमें तो ये अच्छा लगा। पर कोई वाणी बता सकती है क्या कि शहद का मीठा कैसा और चीनी का मीठा कैसा और मिश्री का कैसा, गुलकंद का कैसा, आम का कैसा मीठा, तो बताया तो नहीं जाता जीभ वाले के द्वारा भी स्वाद का स्वरूप। फिर गूंगा हो कहां से बताओ। तो प्रेम जो है ये गूंगे के आस्वादन के भांति, गूंगे के स्वाद के भांति, ये अमरवचनीय, अमरवचनीयम प्रेम स्वरूपम, तो महाराज जी का सूत्र है। पर उसमें छह बातें हैं, ये बात समझने का विषय है। हम लोग प्रेम प्रेम बहुत करते हैं लेकिन प्रेम का स्वरूप तो जानना लग रहा, प्रेम के स्वरूप की छाया भी हम नहीं जानते। रामचरित मानस में ये पीछे गंगा प्रसंग, एक प्रसंग आया, ये भरत जी महाराज वन में जा चुके, बातचीत हो रही, कुछ निर्णय हुआ नहीं, इतने जनक जी बीच में आ गए। जनक जी आ गए तो महारानी कौशल्या को जरा मन में आश्वासन हुआ कि वशिष्ठ की बात तो चलती नहीं है, वशिष्ठ गुरु की तो बोलने चाहने की ताकत बताई। मुनिमति तीर ठार हुआ बलासी, अब तो यदि गुरु महाराज ये जनक महाराज कुछ कर दें ये अगर राम को समझा दें तो राम यदि भरत की बात मान लें तो भरत का जीवन रह सकता है, चिंता भरत की है। तो सीता की माता सुनैना जी आ रही, आई मिलने के लिए। जब जाने लगी तो कौशल्या ने बड़े स्नेह से कहा अपनी समझन से कि आप जाके महाराज से कह दो कि महाराज जरा सा राम को समझा दें, इस प्रकार से काम हो जाए, भरत का जीवन रह जाए। रानी गई, उसने एकांत में अपने पति से अपनी समझन का संदेश कह दिया। वहां पर कुछ जनक के वाक्य हैं, तुलसीदास जी ने बड़ी मार्मिक भाषा में लिखे, उसमें से एक चौपाई सुनाता हूँ। वो कहते हैं, धर्म राज मैं ब्रह्म विचारू, यथामति मोर प्रचारू। धर्म राज मैं ब्रह्म विचारू, यथामति मोर प्रचारू। सोमति मोरी भरत महिमा, कहे काही छल छुवत न चाही। कलम तोड़ सोमति मोरी भरत महिमा, कहे काही छल छुवत न चाही। प्रीति प्रतीति भरत रघुबर की, कही न जाओ कछु जावन पर की। ये भरत और राम के प्रेम पर विदेह राज ज्ञान शिरोमणि जनक के वाक्य हैं। तो जनक बड़ी नम्र भाषा में अपनी पत्नी से भी कैसे बोलना चाहिए, बोलना एक कला है। बोल के अपनी आबरू बिगाड़ दे, दूसरे के आबरू ले ले, जीवन भर के लिए लड़ाई बांध ले, हमेशा के लिए उसको अपना बना ले, ये बोलने की कला है। और कला के साथ होना चाहिए शुद्ध हृदय, केवल कला तो काल बन जाती है। तो बड़ा बड़े सुंदर शब्दों में वो कहते हैं, रानी नम्रता से राजनीति में धर्म के विचार में और ब्रह्म ज्ञान में ये कुछ मेरी बुद्धि काम करती है, यथामति मेरे प्रचार हो, इनमें कुछ कुछ मेरा प्रवेश है, मेरी बुद्धि कुछ काम करती है। अर्थात कोई राजनीति के उलझन आ जाए तो मैं सुलझा सकता हूँ, कोई धर्म की समस्या आ जाए समाधान कर सकता हूँ, और कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे पास आ गए तो उसे भी ब्रह्म ज्ञान मेरे द्वारा मिल सकता है, कहना कैसे नम्र भाषा में। परंतु वो मेरी बुद्धि सोमति मोर भरत महिमा, कहे काही छल छुवति न चाही। मेरी वो बुद्धि भरत की महिमा का बखान तो क्या करे, उसकी छाया को भी छल से भी छू नहीं सकती। तो राम और भरत की प्रीति कहने में तो आती, तर्कना में नहीं आती, तो प्रेम अंग्रवाच्य होता है, प्रेम कहने में नहीं आता। तो प्रेम स्वरूप में अग्रवचरी, तो इसलिए प्रेम की बात तो करना सहज है, प्रेम होना बड़ा मुश्किल। तो नारद जी ने बताया उसमें छह बात होनी चाहिए। तो प्रेम के बाद जो कुछ हम करते हैं ना, ध्यान रखें इस बात का। प्रेम की मूल भित्ति तो है त्याग, प्रेमास्पद के सुख के लिए अपना परित्याग, अपने सर्वस्व का नहीं अपना ही परित्याग। अहम की चिंता से सर्वथा मुक्त हो जाना मोक्ष का इच्छुक भी चाहता है, मुमुक्ष पुरुष चाहता है कि मुझे बंधन से मुक्ति मिले। मैं बंधन में हूं, बंधन की अपेक्षा है मुक्ति की सिद्धि के लिए। अगर बंधन नहीं तो मुक्ति का है कि, पर बंधन है तो किसी व्यक्ति का है, किसी अहम का है। तो मुक्त होना जो चाहता है उसके पास अहम है गया नहीं, पर प्रेमी के पास अहम रहता नहीं। कुछ अगर बचनी है तो त्याग इसकी वृत्ति है। तो इसमें छह बातें प्रधान है। पहली बात है गुण रहितम। श्री कृष्ण भगवान है, ठीक भगवान है, और श्री गोपाल बनाए भगवान जानती थी, ये भी ठीक है। नखल गोपिकानंद में भगवान अखिल देह नाम अंतरात्मृत, और भी ऐसे बहुत से प्रसंग हैं। परंतु जानती हुई भी गोपिकाएं नहीं जानती। अगर कहीं ये प्रकट हो जाए, सिद्ध हो जाए कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, तो क्या गोपिकाएं उनके प्रेम को छोड़ देंगी? वो तो इस बात को भुला देना चाहती कि ये भगवान है। भुलाए बिना तो प्रियतम प्रेष्ठ और हमारे प्रत्येक पदार्थ को ग्रहण करने वाले वो बन नहीं सकते। तो गोपिकाओं को भगवान में क्या क्या गुण है ये जानने की, देखने की न इच्छा है, न आकांक्षा है, न आवश्यकता है। वो तो बस श्री कृष्ण हैं। क्या हैं? हमारे हैं, बस। अच्छे हैं, बुरे हैं, गुण हैं, गुणवान हैं, गुणहीन हैं, ईश्वर हैं, अनीश्वर हैं, राजा हैं, अहिर के बालक हैं, कोई बात नहीं। हमारे प्रियतम हैं, बस। गुण रहितम, जहाँ गुण देख कर प्रेम होता है ना, वो प्रेम सहज नहीं, वो प्रेम अहेतुक नहीं, वो तो गुण के हेतु से अगर गुण नदी खाते प्रेम गया। वो प्रेम तो गुण की पूजा करता है, प्रेमास्पद की नहीं करता। हजार देश करके प्रेमास्पद आ जाए। एक बड़े सुंदर मुझे बात याद आ गई बीच में, ये पतिव्रता स्त्री के काम की बात है। ये प्रसंग मिश्रा का बड़ा उत्तम, स्वामी श्रद्धानंद का नाम आप जानते होंगे। श्रद्धानंद जो पहले महात्मा मुंशी राम थे, गुरुकुल के प्रतिष्ठाता, जिनको एक मुसलमान ने गोली से मारा था, उन्होंने अपने जीवनी में लिखा महाराज, संक्षेप में कहते हैं। उनके पिता सब इंस्पेक्टर थे पुलिस बनारस, ये वहां रहे थे। नौजवान विवाह हो गया, शराबी थी, खुद लिखा है, किसी दुराचार के स्थान से लौट करके शराब पी करके आए। पत्नी आई हुई थी बहुत दिन के नहीं, विवाह के कुछ दिन बाद ही ये आए बेहोश। बेहोश आए आते ही उनको उल्टी होने लगी, उसने अपने हाथ सामने कर, फिर आंचल सामने कर दी, उल्टी कराई, सब कपड़े खराब हो गए, उनको धोया, धोकर कल दूसरे कपड़े पहना दिए और सिर पर पट्टी वट्टी रखी। वो बकते रहे, बकते बकते सो गए। ये पैर दबाती बैठी, रिश्वत दबाती बैठी। दो बजे नशा उतरा, मुंशे हम लिखते हैं, दो बजे नशा उतरा, देखते हैं कि ये लड़की उसी प्रकार बैठी हुई चरण दबा रही हवा का। निशयान ने पूछा, तुम कब से बैठी हो? बोली नहीं, बिना बताए कब से बैठी हो? जब से आप आए थे। पूछी नहीं, बोले नहीं। तुम्हें मेरे मुंह में गंध नहीं आई? तो कहा आ रही थी। तो कहा मैं बड़ा दुराचारी हूं, तो कहती मेरे सामने ये बात मत कहो, आप कैसे भी हो, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है और रामचरित मानस ने मुझे सिखाया है कि पति कैसा ही हो, पति पति ही है, बस। मुझे राम कहते हैं मैं पलट गया उस दिन से, मेरा शराब छूट गया, मेरी बुराई छूट गई, और उसी का फल है कि मैं महात्मा बन गया। गुण रहितम, गुण रहितम आश्लिष्यताम पादरताम पुनष्टुनाम अदर्शनाम मर्महताम करो तो यथा तथा वा विदुभा तुलं पटु लत प्राणनाथ सुस्तवेदना पर चैतन्य महाप्रभु स्तोम राज्य में प्रेमिक प्रेमिका क्या चाहती है इसका चित्र खींचते हैं। उन्होंने 8 श्लोक कहे जीवन में शिक्षा अष्टक, उसी का साक्षात 7वां श्लोक है। वो कहते हैं बड़ी सुंदर चीज, वो कहते हैं कि मेरे प्राणनाथ चाहे मुझे हृदय से लगा ले, चाहे ठोके मार के गिरा दें, तो चाहे दर्शन न देकर मुझे सदा सदा मरम पीड़ा पहुंचाते रहे, वो लंपट कुछ भी कर, तो मेरा प्राणनाथ तो वही है, दूसरा कोई नहीं, गुण रहितम। जहां गुण देखकर प्रेम होता है, धन देखकर प्रेम होता है, विद्या देखकर प्रेम होता है, कुल देखकर प्रेम होता है, वो प्रेम तो उन वस्तुओं को लेकर के है, वो प्रेम आत्मा की प्रीति नहीं है। तो प्रेम गुण नहीं देखता, एक बात ये दृढ़ ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कामना रहितम, जिस प्रेम में कामना है, जिस प्रेम में बदला पाने की जरा भी इच्छा है, जिस प्रेम में निज सुख की वांछा है, जो प्रेम परलोक और मोक्ष का हेतु है, वो प्रेम इन प्रेमियों की भाषा में प्रेम नहीं है, वो तो कामना से कलंकित है। प्रेम के नाम को दूषित करने वाला भाव है, जो है काम और नाम उसका प्रेम हो गया। नाम चाहे काम हो, प्रेम गो परामानाम काम इत्यगमत प्रधान, गो परामाओं के प्रेम का नाम काम है, लेकिन उसमें कामना नहीं, कामना रहित काम यही देखेंगे प्रेम। कामना रहित काम, सुखेच्छा रहित सुख है, अद्भुत चीज है, भोग रहित भोग विलक्षण बात है। जैसे भगवान ने दो ही गुण एक साथ होते हैं, इसी प्रकार ये प्रेम की भी चीज है, पर इसमें कामना नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं। हम प्रेम करें और हमसे बदले में हमारा प्रेम आज तब प्रेम करे, तब तो हम प्रेम करेंगे, ये प्रेम नहीं, ये प्रेम नहीं। हम प्रेम करें और बदले में वो प्रेम न करे, परंतु हमारे प्रेम को प्रेम समझे, ये भी प्रेम नहीं। हमारे प्रेम की उपेक्षा करे अथवा हमारे प्रेम का बदला वे अप्रेम के रूप में दे, और हमारा प्रेम दिन दूना बढ़ता रहे, इसका नाम प्रेम। कामना रहितम, तो भगवान से हम जब कुछ चाहते हैं ना, किसी वस्तु को लोक परलोक की भगवान से चाहते हैं, तो वहां भगवान से काम लेना चाहते हैं। प्रेम में तो एक और चीज है, दो चीज है, एक तो ये है कि हम ये समझें कि हम नहीं मांगेंगे, भगवान दुख देंगे उसमें भी हमारा मंगल ही करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ नहीं मांगना हमें, न मांगेंगे न हम करेंगे, उनका प्रत्येक विधान मंगलमय है, हमारा मंगल ही होगा, एक तो ये। तो दूसरा ये कि मंगल मंगल की कल्पना नहीं है, वो प्रसन्न किस बात में है यही देखना है। तो जहां मंगल की कल्पना है वहां भी मांगना नहीं है, वहां भगवान के सौहार्द पर विश्वास है। हम तो जब बहुत आगे बढ़ते हैं, बड़े आस्तिक बनते हैं ना हम लोग, तब कहीं कहीं भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं, बुद्धि पर नहीं करते, सौहार्द पर तो करते नहीं। लेकिन महाराज देखिए, हमने अत्यधिक शेयर खरीदे हैं, उनका भाव तेज हो जाना चाहिए। आप सर्वशक्तिमान हैं और हम आपके भक्त हैं, और भक्ति करेंगे आपकी, शेयरों की तेजी कर दें। वो कहेंगे तुम शेयरों की तेजी तो ये करेंगे, पर तुम्हें और तरह से धन दिला देंगे। बोले ना न दिला उसे कहीं, योजना हमारी और पूरे करने वाले थे, तुम्हारी बुद्धि पर हमारा विश्वास नहीं। न करो तुम, भूल जाओ कहीं, सोचेंगे हम अपना भला, योजना बनाएंगे हम अपनी आप, स्कीम हमारी, पर आप उसको पूरा कर सकते हैं, शक्तिमान है आप, और हम ठहरे आपके भक्त। तो हमारी भक्ति के बदले में मैंने हम तुमको नौकरी देते हैं कि नहीं है? इतने मजबूत लंबे चौड़े आदमी काम करने वाले, मजदूरी लिया जाए हम बताएं से काम किया जाए, हमारी तो ये भक्ति है। इसके बाद वो भक्ति आती है जहां भगवान की बुद्धि पर विश्वास होता है, भगवान जो करें सो मंगल करें, हम इन पर छोड़ देते हैं। वहां पर भी मंगल की कामना है कि हम कहीं मांग लेंगे तो भूल से मांगेंगे, पर वो देंगे तो ठीक देंगे। तो इसलिए उनकी बुद्धि पर विश्वास करें तो अपने अच्छा मिलेगा। ये यहां भी मंगल की कामना है, तो मंगल की कामना बुरी चीज नहीं है, पाप नहीं है, और मंगलमय भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, ये भी सर्वथा सत्य है। ये होते हुए भी जब तक मंगल की कामना है तब तक कामना रहितम ये चीज नहीं घटती प्रेम में, कामना। और जब ये विशुद्ध भाव आ जाए कि ये सुखी इस बात में है कि हमारे पास पैसा आवे, आवे बहुत सुख लाए भाई लेंगे, और जरा सा मालूम हुआ कि वो सुखी इस बात में है कि तुम्हारा सारा पैसा आज का नष्ट हो जाए, तो वो कहेगा कि अभी कर दो, देर न करना, कहीं कहीं देर हमारे पैसे नष्ट होने में हो और तुम्हें जरा सा भी सुख का अभाव प्रतीत हो, ये हमेशा नहीं होता। हमें नरक में अभी गिरा दे अगर तुम्हें सुख मिलता हो, हमारा अपमान अभी कर दो अगर तुम चाहते हो, संसार भर में सदा के लिए हमारी निंदा होती रहे अगर तुम चाहते हो, कहते हो मैं क्या स्वीकार किया, यही तो स्वीकार। एकांत में बातचीत हुई कहकर से भगवान ने कहा मैया देखो तो सही है, सब हमने किया है। कहा बेटा और के साथ मत करना ऐसा, बड़ी कठिन चीज है, तुमने ठीक चाहते तो हमको चुना पर हमने निभा नहीं, परंतु अमर कलंक इतिहास में रहा हो रहे थे, कहीं का ऋषि भी गाली दे, मुनि भी गाली दे, घर वाले भी गाली दे, बेटा भी गाली दे, हैं घर वाले सब नाराज रहे, पर उस कलंक को चुपचाप कहते हैं वो राम का मिशन पूरा हो जाए, राम के अवतार का कार्य सुसंपन्न हो जाए, कितनी बड़ी चीज। इस अवस्था में भी मन पर मलानता ना आवे, प्रसन्नता हो कि मेरे राम का काम हो रहा है, मेरा भगवान मेरी निंदा से प्रसन्न है, मेरा भगवान मेरी मृत्यु से प्रसन्न है, मेरा भगवान मेरे बिछड़े से प्रसन्न है। अलग रहने में बड़ा दुख है प्रेमी को प्रेमास्पद से, पर यदि प्रेमास्पद चाहता अलग रहे तो वो दुख उसके लिए परम सुख के रूप में परिणत हो जाता है। मानता नहीं भाई क्या उसको सुख तो अपने सुख मान लो, ऐसा नहीं, जहां ये मानना है वहां तो कृत्रिमता है। इस प्रकार की उसे अनुभूति होती है, वो जब दुख पाता है तब जब भगवान को हंसता देखता है तो हंसने लगता है, अपने दुख को भूल जाता है। ऐसे लोगों को हमने देखा है, जो एक को बड़ी विपत्ति जब इन पर आई, बड़ी विपत्ति, उस समय हमने उनको हंसते पाया और ये कहते पाया मन से, इसमें हमारे भगवान राजी हैं, लक्षण बात तो कामना रहितम, ये दूसरी चीज, गुण रहितम कामना रहितम। हम तो जरा सी बात में नाराज हो जाए भगवान पर, लड़के का सिर दुखने लगे इतना अच्छा हो और भगवान की माला हमने फेर ली है, कि भगवान का काम था ना हमने माला फेरी, क्यों अच्छा नहीं किया सिर उसका, और नहीं किया तो भगवान कैसे। हमारे पास एक पत्र आया अभी कि उसकी कोई पौने दो साल की लड़की मर गई है, उसने कहा हम भगवान की माला फेरते थे, नाम जपते थे, हमारी लड़की मर गई, लड़की को हमें बचा सके कैसे भगवान, नहीं मानते मैं सब भगवान अब मत मानो भाई, तुम्हारे एक के न मानने से भगवान तुम बचेंगे नहीं, न मानो। पर ये हमारी दशा ऐसी है, हम तो भगवान से प्रत्येक वस्तु का बदला चाहते अभी और अधिक से अधिक, न दे भगवान तो भगवान हमारी दृष्टि में भगवान नहीं, ये भक्ति नहीं, ये प्रेम नहीं, ये श्रद्धा नहीं। तो प्रेम में कामना रहितम, ये दूसरी बात। तीसरी बात अविच्छिन्नम, प्रेम जो है ना, प्रेम का कभी तार नहीं टूटता, कई धारावत। जो प्रेम बीच में टूट जाए, घट जाए, मिट जाए, हट जाए, रुक जाए, वो प्रेम प्रेम नहीं, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी गुण की कामना की कामना लगी है, नहीं तो रुकता नहीं। अविच्छिन्नम। चौथी बात सूक्ष्मतरम, जो छलकता है ना ऊपर ऊपर बहुत, उसमें बहुत दफे दंभ होता है, धोखा होता है, ये तो अंदर की चीज है, कभी कभी आ जाता है बाहर प्रकाशित को आते तात्पर्य कभी कभी होता है, लेकिन प्रेम जो है वो सूक्ष्मतर है, सूक्ष्म भी सूक्ष्मतर है, बड़ी महीन चीज है, वो वाणी में नहीं आता, क्रिया में ही कम आता है, क्रिया में जो आता है वो तो दिखाई हो जाता है, दिखाई, इसीलिए वो प्रेम फिर प्रेम ही रहता, अंदर रहता है, छिपा रहता है। प्रेम ये हृदय का गुप्त धन है भला, ये बिखेरने का नहीं है, ये तो गुप्त रूप से बना रहे और बना रहे, ये बढ़ता रहता है। सीता जी ने पूछा हनुमान जी से कि मेरे लिए कुछ संदेश सरकार ने कहा, बोले हाँ कहा, क्या कहा, तो तत्व प्रेम कर मन तेरा जानत प्रिया एक मन मेरा, जानत मेरा एक मन, तत्व प्रेम कर मन तेरा जानत प्रिया एक मन मेरा, सो मन रहत सदा तेहि ताहि जानहि प्रीति रीति यहि नाहि। एक चौपाई में तत्व बड़ा सारा प्रेम का, राम के मुख की वाणी कह रहा है, राम कहते हैं कि सोते प्रिय तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल एक मेरा मन, वाणी में नहीं आता तो दूसरा जानता नहीं, केवल मेरा मन जानता है, और वो मन भाई मन जाकर बताओ कर बताने कैसे, सो मन रहत सदा तेहि ताहि, वो मेरा मन निरंतर रहता है तेरे पास, कितने में जान ले प्रेम का। तो सूक्ष्म तरम, पांचवा है अनुभव रूपम, प्रेम अनुभूति की वस्तु है, प्रेम कहने की वस्तु नहीं, प्रेम का जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। और छठी बात ऐसी कही, प्रतिक्षण वर्धमानम, क्षण क्षण में जो बढ़ता है प्रेम अनंत ज्ञान जो है ना, ज्ञान अपनी प्राप्ति करा के कह देता कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई वस्तु नहीं, कुछ कार्य न दे दिया थे अंत, पर प्रेम कहता है कि कोई अंत ही नहीं, प्रेम अनंत है, असीम है, जितना जितना ये बढ़े उतना बढ़ती रहता, कभी इसकी सीमा आती नहीं, कभी इसका अंत आता ही नहीं, प्रतिक्षण वर्धमान। तो ये छह बातें प्रेम में होनी चाहिए, तब वो प्रेम प्रेम होता है। उनमें जितना जितना जिस जिस का विकास होता है, उतना उतना ही प्रेम में पवित्रता आती है। इसीलिए जहाँ ये बातें हैं वहाँ निज सुख भोग, आत्म सुखेच्छा, प्रियतम से कुछ पाने की इच्छा, प्रियतम के द्वारा सुख की इच्छा, ये होती नहीं। अतएव प्रियतम के द्वारा मिलने वाला सुख, इसीलिए स्वीकार किया जाता है कि वो प्रियतम को सुख देने वाला, प्रियतम के द्वारा मिलने वाला सुख इसीलिए स्वीकार होता है कि उससे प्रियतम को सुख होता है, नहीं तो सुख की कोई कल्पना नहीं। तो जिस सुख में, जिस अपने सुख में अपना सुख नहीं, प्रियतम का सुख, वो सुख प्रेम का सुख, और जिस अपने सुख में प्रीतम का सुख हो, चाहे वो अपना सुख, वो भोग सुख, वही भोग का और प्रेम का अंतर। चैतन्य चरितामृत में निजेंद्र प्रीत इच्छा तार नाम काम, कृष्ण सुख इच्छा धरो प्रेम नाम, ये प्यार है बंगला में कि अपनी अपने इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जहाँ श्री कृष्ण से है, उसका नाम है काम। चाहे वो इच्छा करने वाले ऊंचे से ऊंचे महात्मा माने जाते हैं, कोई हर्ज नहीं, महात्मा हो चाहे प्रेम महात्मा हो, महात्मा और होते हैं और प्रेमी और होते हैं, भला एक महात्मा पर आक्षेप तो नहीं है। प्रेमी महात्मा नहीं बनना चाहते, प्रेमी को महात्मा बनने की आकांक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं, वो तो अपने को प्रेमी नहीं कहता, वो तो प्रेमास्पद के सुख पहुंचाने की कार्य यंत्र मात्र है। प्रेमास्पद उसके द्वारा सुख प्राप्त करते रहे। और ये कल मैंने कहा था कि बहुत याद रखने की बात है कि एक ये विशुद्ध प्रेम ही इस प्रकार का महान तत्व है जो निष्काम पूर्ण काम आत्मकाम भगवान में कामना पैदा कर देता है, उस सुख ग्रहण साधन की। वास्तविक कामना खेल नहीं, दंभ भी नहीं, दंभ तो होता ही नहीं भगवान में, पर वो प्रेम इस प्रकार की वस्तु है कि उसमें इतना पवित्र तम रस है, उस रस का आस्वादन भगवान करना चाहते हैं। क्यों? उन प्रेमियों को कराने के लिए। तो इसलिए ये प्रेम में सबसे ऊंची चीज है, भोग सुख का सर्वथा अभाव और भगवान के सुख का सर्वथा अभाव। भगवान के सुख की इच्छा ही प्रेमी का स्वरूप, प्रेमी का स्वभाव, प्रेमी का जीवन, प्रेमी का सब कुछ। जिस क्रिया में, जिस चेष्टा में, जिस विचार में, जिस संकल्प में प्रेमास्पद का सुख नहीं, वो क्रिया, वो चेष्टा, वो संकल्प, वो प्रयत्न प्रेमी करता ही नहीं, करता ही नहीं, उसके द्वारा होता ही नहीं। उसका हंसना, रोना, उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, जगना, बात करना, ये सब का सब पूरा का पूरा सर्वथा और सर्वदा केवल प्रेमास्पद परम पृष्ठ अपने भगवान को सुखी बनाने के लिए होता है। ये बात वो प्रेमी कहता नहीं कि मैं सुखी बनाने के लिए करता हूँ, स्वाभाविक उसकी क्रिया ऐसी बनती है, स्वाभाविक। तो परम त्याग है ना, जहाँ परम त्याग होता है वही परम प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तो घर में देख लीजिए, जितना जितना त्याग करेंगे आप उतना उतना प्रेम बढ़ेगा, करके देख लीजिए। घर में चीजें बटने वाली हैं और बंटवारे में अपने हिस्से में कमरे से सुझा दीजिए, فری ہو جائے گا. تو جگہ لینا چاہیں گے تو ہلوائی ہوگی. سیدھی سی بات ہے, جہاں جہاں پر ہم تیاگ کریں گے وہاں وہاں پر پریم ہوگا, اور جہاں جہاں پریم ہوگا وہاں وہاں سکھ ہوگا. اس لیے جو بھگوت پریم ہے وہ تیاگ کا تیاگ کی پراکاشٹھا ہے, اور اس لیے اس میں سکھ کی پراکاشٹھا ہے. پراکاشٹھا بھی اسیم سکھ ہے. اس سکھ کے سامنے یہ ایک بات اور ہے, پریمی کا یدپی بھگوان کا روپ سوندریہ اس پرکار کا درکشن سوابھاوک ہے کہ اپریمی بھی شترو بھی اس کو دیکھ کر روہت ہوتا ہے. یہ بھگوان کے سروپ سوندریہ کی مہیما ہے سوابھاوک. پرنتو پریمی بھگوان کے سروپ کو جس روپ میں دیکھ پاتا ہے اس روپ میں دوسرا کوئی دیکھ پاتا ہی ہے. اس کی آنکھ اس پرکار کی ہو جاتی ہے پریمی کی کہ اس آنکھ میں اپنے پریماسپد بھگوان کا جو روپ آتا ہے وہ روپ دوسرے کی آنکھوں میں آتا ہی نہیں. اس لیے اس میں اس کی اتنی اتنت آسکتی ہوتی, وہ آسکتی روپ آسکتی نہیں ہے. یہاں کے اس سے بھوتک روپ کو دیکھ کر جو چت میں آکرشن ہوتا ہے یہ تو کہیں کہیں نرکوں میں لے جاتا ہے, پر وہ جو بھگوان کے سوکھ سندیو کو دیکھ کر پریمی کے من میں ہونے والا جو آکرشن ہے جو سکھ ہے وہ سکھ تو بلکشن ہے ہی, پر وہ اتنا پوتر ہے اتنا وہ پاون ہے اتنا وہ دیو ہے کہ اس میں کہیں بھوگ کی کو کسی پرکار کی کلپنا نہیں. تین پرکار سے اندریوں سے کام ہوتا ہے, ایک سوابھاوک اندریوں کا دشوں میں آچرن آنکھ دیکھتی ہے, ایک کسی سدچھا سے اندریوں کا دشوں میں آچرن, اور ایک بھوگ کے لیے بھوگچھا سے دشوں کا اندریوں کا دشوں میں آچرن. سامنے کچھ چیز دیکھی دیکھ گئی دیکھ گئی, ایک آدمی جا رہا ہے لنگڑا ہے لولا ہے بھوکا ہے رو رہا ہے سے دیکھ گیا اس میں کوئی کریا نہیں ہے. ایک اس کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ کس سیوا کرنی ہے, تو یہ اور چیز ہے. اور ایک کسی وستو کو نہیں دیکھتے کہ اس کو ہمیں بھوگنا ہے سکھ لینا ہے. تو تین پرکار سے یہ بھوگ ہوتا ہے, تو جہاں پر اندریوں کا کیول وشے میں آسرن ہے وہاں اس سے نہ لابھ ہوتا ہے نہ ہانی ہوتی ہے, من صاف رہتا نہیں, آنکھ کے سامنے کچھ گئی گئی آئی آئی. جہاں بھوگ سے ہوتا ہے وہاں دکھوں کی اتپتی ہوتی ہے. یہ سنسپر سجا بھوگا ہے دکھ وہ نہ آدینت ونت کرتے ہوئے نہ تیسرا نہ تو بدھا. یہاں جو وشے کا بھوگ ہے یہ سارے بھوگ جو سنسپرش بھوگ ہیں یہ دکھ یونی ہیں, دکھوں کی اتپتی کے ستھان ہیں, اور وہ جو ہے جہاں شبھیچھا کو لے کر کے راگ دوش رہی ہرنے سے جب بھوگ کرتے ہیں اس کے لیے کہا راگ دوش بھیت وشیان اندریہ شرم آتمشر بھو آتما پرساد میں بگچھتی اور پرسادے سب دکھا نام ہم رسو بجائے. وہ اندریوں کا وشیوں میں بچرنا دکھوں کی اتپتی کا ستھان, اور وہ اندریوں کا وشیوں میں بچرنا دکھوں کے سروتھا ناش کا سادھن, اور وہ اندریوں کا وشے میں بچرنا سروتھا ورتھ. تو جہاں ہم بھگوت دشٹ سے بھگوان کے لیے جب بھگوان کو دیکھتے ہیں اور بھگوان کو دیکھنے کی آنکھ سے جب ہم بھگوان کو دیکھتے ہیں پھر بس پھر جو انوپم آنند ملتا ہے اور جو دیو بھاو آتا ہے اس کی کلپنا ہم لوگ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم لوگ اس سطر تک پہنچے نہیں. اس سطر تک پہنچے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ پریمی ہوتے ہیں, اور ان پریمیوں کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہی بھگوان کو ٹھیک ٹھیک دیکھ سکتی ہے. تو तो गोपी की आंख भगवान को पहचानती है, कंस की आंख नहीं पहचानती, नहीं पहचानती, और दूसरे राजा भी नहीं पहचानती। शिशुपाल के भी आंख थी और भीष्म के भी आंख थी, दोनों का देखे वहां पर कितना अंतर। दोनों के सामने बने श्री कृष्ण, वो कहते छलिया है, कुटिल है, ग्वाला है, नवन है, और वो कहते सरपूत जो है क्या बात आंख। तो ये जो प्रेमियों की आंख होती है ये असली आंख होती है, और प्रेम की आंख बिना त्याग को मिलते नहीं। भोग त्याग जहां तक नहीं है वहां तक भक्ति की बात प्रेम की बात नहीं हो सकती। भोग रहते हैं वहां पर, वे भोग रहते हैं भगवान के पूजन की सामग्री बनकर, भगवान का स्थान लेकर नहीं रहते। तो ऐसी अवस्था में जो प्रेमी है वो क्या चाहता है, एक ही बार उसकी अंतिम बात कह देनी है, वो ये, वो प्रेमी चाहता है कि किसी प्रकार से मेरे जीवन में ऐसी कोई भी क्रिया हो नहीं, ऐसा कोई मेरे मन में संकल्प आए नहीं, ऐसी कोई मन में मेरे चाह उत्पन्न हो नहीं जो मेरे प्रियतम भगवान की चाह के प्रतिकूल हो। ऐसा कोई काम नहीं हो जिससे प्रियतम के सुख में जरा भी बाधा आती हो, ऐसा कोई काम न हो जो उन्हें सुख पहुंचाने वाला न हो। अब उसमें क्या हमारी कुछ भी दशा होती है, ये दशा की कोई भी किसी प्रकार के भी मन में वो भय की बात प्रेमी नहीं सोचता। कुछ भी दशा हो जाए कोई परवाह नहीं, पर मेरी प्रत्येक दशा मेरे प्रियतम को सुख पहुंचाने वाली हो। यहां वो जितने बैठे हैं तो जो प्रेम की चर्चा बहुत करना चाहते सुनना चाहते हैं, उन लोगों को, मुझको भी आप लोगों को भी, सबसे पहले ये एक बात जान लेनी चाहिए कि भाई जिसको इस प्रेम राज्य में आना है उसको अपना सब कुछ नष्ट कर देने के लिए पहले तैयार हो जाना चाहिए सब कुछ। इसीलिए जहां प्रेम की असली बात सामने आती है वहां क्या आता है तो लोग भाग जाते हैं। वो एक गुजराती का गीत है, प्रेम पंथ पावत निज्वाला भाली पाछा भागे जो ने मान पड़ा तो महारस माने देख नारा दाधे जो ने। तो कहते हैं कि जो प्रेम का पंथ है ये पावक की ज्वाला है, आग की लपट है, इसे देख करके दूर से लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं। क्यों? कि प्रेम जहां पर प्रेम की बात करो, जहां प्रेम सामने आया असली, तो पहले कहेगा क्या करो, तुम्हारे सर्वस्व को जलाएंगे अब हम, तो आग देखता है डर जाता है। ये ध्यान रखने की बात है, ये भाषा जगह है तो कठिन, प्रेम का आह्वान करना हो तो प्रेम आग बन के आएगा पहले सत्य जला देने के लिए, और उस जलने में अगर हमारी तैयारी हो, उस बत्ती में अगर हम गिर सकते हैं तो मान पड़ा तो महारस मानव, तो आग वहां पर अमृत बन जाएगी। तो आग वहां पर मार्ग क्यों बन जाएगी कि जगत के सारे ये बिरस रस को, कुरस रस को, अरस रस को या खा करके और विशुद्ध जो सत्य रस है प्रेम रस, उस रस में ले जा करके हमको बैठा देगी। तो जब तक वो आग इन रसों को नहीं जला देती तब तक वो रस आता नहीं। इसलिए उन्होंने गोपियों ने कहा कि भाई हमको तो सब कुछ त्याग करके प्रियतम श्री कृष्ण का हो जाना है, और सिद्धांत की बात है उनके चरणों में जब आ जाए तो सब कुछ का त्याग फिर क्या रहता है, सब कुछ तो वही है, सब कुछ के प्राण हो, सब कुछ के आधार हो, सब कुछ के आत्मा वही। तो ये तैयारी कर रही है, इसमें تین چار بات دھیان دینے کے لیے بس وہ کہہ کے سماپت کر دیتا ہوں. ایک بات تو یہ پریم چاہنے والوں کے لیے جس کو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے پرانوں کے پردھان چنتن کا وشے ہے. پریماس پد کو کبھی بھولا نہیں جاتا تو آپ اپنے من میں بھاونا یہ دیکھیے اپنے من کو کہ آپ بھگوان پریماس پد بھگوان کو کتنا بھولتے ہیں. اگر بھولتے ہیں بہت تو پریم ابھی آیا نہیں, آنا چاہیے. دوسری بات پریماس پد میں کبھی بھی دوش نہیں دیکھنا ہے. تیسری بات وہ بھگوان سے کچھ چاہتا ہی نہیں, کیونکہ بھگوان کو دینا چاہتا ہے. اور چوتھی بات وہ ولکشن بات ہے, ملنے پر بھی ملنے کی اتکنٹھا نہیں ملتی ملنے پر. یہ اسی لیے یہ ذرا کٹھن پرسنگ ہے, یہ جو پرکیا بھاو ہے نا مہاراج, پرکیا بھاو میں یہ لوکک پرکیا پن نہیں ہے. یہ چار باتیں ہیں. اپنی پتنی ہمیشہ پاس رہتی ہے تو اس کو گن بھی دیکھتے ہیں دوش بھی دیکھتے ہیں.
वंदे मुकुंदमरविंदजनायकाक्षं कुंदेन्दुशंखदशनं शिशुगोपवेशं इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठं वृंदावनालयमहं वसुदेवसूनुं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसितललिनाश्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् ीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा त्वम् निर्गुणम् निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं कुतदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिंदी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो धावति श्रीहरिः. कल वाले पर्चे तो खो गए, कल वाले पर्चे तो खो गए और याद मुझे है नहीं किसने क्या लिखा था. और जगत खो जाने की तेजी है नहीं है, उसको खो ही देना. अपने आप को जो जगत का अपना आप है उसे भी खो देना है. नए पर्चे दो आए हैं और दो एक आदमियों ने मौखिक रूप से भी कहा है कुछ कहने के लिए. एक एक पर्चे में लिखा है उसका उत्तर मैं उनसे पूछूं कि आप जिस अचिंत्य ब्रह्म का ध्यान करना चाहते हैं मन नाश हो जाएगा तो वो ब्रह्म कहाँ रहेगा. श्याम सुंदर की बात पूछते मैं ब्रह्म की बात पूछता हूँ. तो जो मन की चीज है वो तो मन के साथ नाश हो ही जाएगी. चाहे उसका नाम ब्रह्म रखे चाहे श्याम सुंदर रखे, हमारे मन की कल्पना की जो वस्तु है वो तो जहाँ कल्पना का आधार नहीं रहा वहां रहेगी. इसका तो कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। और जो तत्व वस्तु है वो चाहे मन रहे, मन का नाश हो जाए, प्रकृति का जहाँ प्राकृत्य होता है उसके पूर्व भी वो जो सत्य वस्तु है वो तो रहती है और वो रहेगी ही। तो हमारे श्याम सुंदर यदि सत्य वस्तु है तो मन चाहे न रहे वो तो है ही और रहेंगे ही, रहते ही है, इसलिए ये प्रश्न तो ठीक बनता है। मन अनित्य है, भगवान अनित्य नहीं। मन असत है, भगवान असत नहीं। मन मिटने वाला है, भगवान मिटने वाले नहीं। जहाँ तक मन है वहाँ तक मन से भी हम भगवान का चिंतन करें, ये मन का सौभाग्य, ये मन की शोभा, ये मन का पुण्य। और जब मन न रहे तो बड़ा अच्छा, यही तो चाहते कि मन न रहे, श्याम सुंदर रह जाए, इसमें बड़ा आपत्ति क्या है। तो ये प्रश्न तो इतने में समाप्त। दूसरी चीज एक है, वो एक सज्जन ने कही, उसका उत्तर संक्षेप में यह है कि भाई जो मैंने ये कहा था कि सब में भगवान को देखो, ये देखना जहाँ तक है वहाँ तक हम कल्पना करते हैं, परंतु वास्तव में तो भगवान है। ये एक बहुत समझने का विषय है कि हम जगत में जिन वस्तुओं को देखते हैं और जिनकी हम कल्पना करते हैं वो तो हमारा मनोराज्य है, लेकिन अगर हम जगत की इन कल्पित वस्तुओं में भगवान को देखते हैं तो भगवान तो है। तो ये सब में भगवान को देखो, ये कहने का ये मतलब नहीं है कि भगवान है नहीं, भगवान की कल्पना करो, ये मतलब नहीं है कहने का। कहने का मतलब ये है कि तुम जो सत्य में असत को देख रहे हो, भगवान में जो जगत को इस रूप में देख रहे हो, ये तो ठीक है नहीं, पर इस जगत में, इसके अंतराल में, इसके आत्म रूप से, इसके बाहर भीतर बहिरंतस्य भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिकेत तत्। वो बहुत दूर बहुत नजदीक भगवान, वे तुम्हारे बाहर भी भीतर भी, जहाँ तुम हो वहाँ भी, तुम्हारे रूप में भी, तुम्हारे आकार में भी, केवल और केवल वही है। तो इसलिए जगत में भगवान को देखना ये असत में सत को देखना है, तो ये कल्पना नहीं। ये मेरे कल के कहने से कोई ये न समझे कि मैं ये कहता हूँ कि कल्पना से भगवान का हम चिंतन करें, भगवान यहाँ पर है तो नहीं, पर हम चिंतन करते हैं हमारे लाभ के लिए। हम चाहे चिंतन करें न करें, हम चाहे अपने लाभ से वंचित रहें या लाभ प्राप्त करें, भगवान तो है ही। हमारे न चिंतन करने पर भी है, हमारे न मानने पर भी है, हमारे न देख पाने पर भी है। जैसे अंधा आदमी किन्हीं वस्तुओं को नहीं देख पाता, बाहर की चीजों को, तो उसके न देख पाने का अर्थ ये नहीं कि वस्तुओं का अभाव हो गया है। वस्तु तो है ही, उसकी दृष्टि शक्ति का अभाव है, वो उन वस्तुओं को देख पाता नहीं। ये कमी उस देख न पाने वाले की है, वस्तु का अभाव नहीं। इसी प्रकार भगवान से भरा हुआ सब कुछ है, उनके सिवा और कुछ है नहीं। ऐसी अवस्था में उनको न देख पाने का अर्थ यही है कि हमारा अज्ञान है, हमारा मोह है, हमारी आंखें अंधी हैं, हम ठीक ठीक वस्तु का दर्शन नहीं कर पाते। ये हमारी गलती, हमारा अपराध, हमारा पाप, हमारा दुर्भाग्य, हमारी मंदबुद्धिता, कुछ भी कह लें, हमारा दोष है, भगवान तो है ही। तो भगवान की कल्पना ये सत्य में सत्य के दर्शन का प्रयास है। सब जगह भगवान की जो हम कल्पना करते हैं, इसका अर्थ क्या है? ये सत्य दर्शन का प्रयास है, ये कल्पना नहीं। जहाँ हमारी आंख जरा सी खुली कि हमें ठीक ठीक दिखाई देगा कि हम जो कुछ देख रहे थे वो तो आवरण था, और वास्तव में ये आवरण भंग हो गया, दृष्टि शक्ति खुल गई, अब सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखते। तो बोले भाई, अब दूसरा प्रश्न आता है इसी के अंदर, बोले वो भगवान जिनको हम देख पाते हैं, वो भगवान विचार के आधार पर तात्विक सत्य हैं, या वो भगवान दिख भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं, ऐसे भी हैं? तो भगवान के संबंध में ये कहना बनता नहीं कि ऐसे हैं ऐसे ही हैं और ऐसे नहीं ही हैं, ये कहना बनता नहीं। हिमाचत से भले ही हम कह लें अपने अज्ञान को अपनी अशक्ति को भगवान पर भले ही थोप दे, हम जो नहीं कर सकते वो भगवान भी नहीं कर सकते, ऐसा हम भले ही मान लें, पर ये बात है नहीं। भगवान दोनों रूपों में एक साथ नित्य निरंतर रहते हैं, एक होते हुए वो नित्य निर्गुण है नित्य सगुण है, नित्य निराकार है नित्य साकार है, नित्य अदृश्य है नित्य दृश्य है। तो उनका जो दृश्य है वो इदम वाला संसार वाला दृश्य नहीं है, वो स्वयं ही दृश्य बनते हैं, स्वयं ही दृष्टा है, स्वयं ही दर्शन है, पर वो है। तो आप अगर ये देखना चाहेंगे कि भगवान श्याम सुंदर भगवान राघवेंद्र कोई भी सर्वत्र व्याप्त तो आपको वैसा ही दिखाई देगा, इसमें कोई संदेह नहीं, उस रूप में भी है। वो एक देशीयता सर्वदेशीयता में कैसे परिणत होती है ये चीज हमारी बुद्धि उसे समझ नहीं सकती, पर यही तो विशेषता है, एक देशी हमारी बुद्धि मानती जिसको उसी रूप में सर्वदेशीय है, ये उनकी विलक्षणता है। तो यदि आप भगवान को साकार रूप में देखना चाहेंगे तो उस रूप में भी आपको देख सकते हैं। है। अब तीसरा उसका प्रश्न का एक अंश है कि क्या भगवान हमारी आपकी तरह सामने बैठकर बातचीत कर सकते हैं, क्या भगवान हमारी आपकी भांति मिल सकते हैं, क्या भगवान हमारी आपकी भांति खा पी सकते हैं, क्या भगवान का ठीक ठीक हमारे अंगों को स्पर्श प्राप्त हो सकता है, ये एक प्रश्न है। वहाँ प्रश्न के साथ संदेह भी है कि भाई विचार से ऐसा होता होगा, भाव से ऐसा होता होगा, कल्पना जगत में ऐसा होता होगा, वास्तविक शायद न होता हो, पर ये बात है नहीं। विचार से मन की कल्पना से होता है, इसमें तो कोई कहने सुनने की बात नहीं, ये तो मन की गति को जानने वाले सभी पहचानते हैं कि हमारा मन जिस किसी वस्तु की कल्पना करता है उस वस्तु को मन मूर्तिमान कर देता है, इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन अब दूसरी चीज जो है उसमें भाई ऐसी बात है, सत्य तो है निश्चित सर्वथा, 16 आने नहीं, जितने आने में सत्य आत्मा ने उतने आने, लेकिन भगवान को ये कदापि गरज नहीं है कि वो मिल सकते हैं इस बात का सर्टिफिकेट लेने आपसे आए, आप न माने उनका बिगड़ता नहीं, आप भाव में उनको माने विचार कल्पना की वस्तु माने आपके लिए वैसा ही कुछ उनका बिगड़ता नहीं, आप ऐसा माने कि ऐसी चीज होती नहीं न माने उनका कोई बिगड़ता नहीं। लेकिन जिनको विश्वास है परीक्षा के लिए नहीं और आकर के हमारा काम निकाल देंगे, हम मुकम्मल जब जरूरत होगी तो उनको बुला के हम अपना काम करवा लेंगे, हमारे पास बैठ के हमारी बात सुन लेंगे और हमारा काम करने की जरूरत होगी तब उनको बुला लेंगे, तो ऐसी बात भी भगवान नहीं करते। यदि ये तीन बात किसमें आवश्यकता है, आपका विश्वास हो पहली बात, दूसरी बात उनके बिना आपसे न रहा जाता हो इस प्रकार की उत्कंठा आपके मन में जाग गई, दूसरी बात, और तीसरी बात उनकी इच्छा पर आप अपने को छोड़ देना चाहते हो, छोड़ देने के लिए प्रस्तुत हो, ये तीसरी बात, ये तीन बात होगी तो सच्ची बात मैं कहता हूँ आप न माने न सही, कोई आवश्यकता नहीं आपके मानने की और मुझे जरा आवश्यकता नहीं आपको मनवाने की, कुछ नहीं, परंतु निश्चित है कि भगवान आपकी भांति मेरी भांति पास बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हंस सकते हैं, रो सकते हैं, सारी बातें भगवान कर सकते हैं, सकते नहीं ऐसा है। इसलिए ये चीज जो है ये प्रश्न करने के नहीं, उत्तर देने के नहीं और प्रश्नोत्तर को लेकर के विवाद और शंका समाधान की भी नहीं, ये तो विश्वास के जगत की बात है। जिनका विश्वास है वो आज भी भगवान को पाते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, खाते पीते हैं, आज भी ऐसा होता है। जिनका विश्वास नहीं उनको विश्वास करवाने की आवश्यकता नहीं, न भगवान को जरूरत और न भगवान को, भगवान का जिनसे कभी मिलन होता होगा उनको जरूरत, उनको जरूरत नहीं भगवान से, आपसे आप मान ली इस बात को तो क्या जरूरत है आप न माने। आपके मानने से कुछ विशेष मिल जाएंगे और न मानने से उनका मिलना बंद हो जाएगा तो है नहीं। तो उस प्रेमी भक्त को तो मतलब है अपने भगवान से, आपसे कोई मतलब नहीं। वो इसीलिए चीज प्रचार की नहीं है, प्रचार की चीज सदाचार है, प्रचार की चीज ज्ञान वैराग्य है। ये जो चीज है प्रचार की बिल्कुल नहीं है, ये तो अपने जीवन की चीज है। जिसके जीवन में इस चीज की लालसा जागृत हो, जो विश्वासी हो, जिसके मन में संदेह का अंकुर न पैदा होता हो, जिसको चाह लगी हो, उत्कट इच्छा हो, जिससे रहा न जाता हो इसके बिना, और जो अपने आप को प्रभु के चरणों में बिना शर्त के समर्पण कर चुका हो, उसके लिए चीज प्रत्यक्ष थी, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रहेगी। फिर चौथी शंका आती है, भाई प्रत्यक्ष तो है, प्रत्यक्ष रहेगी, तो ये तो माइक जगत में रहेगा ना, आंख से देखेगा वो चीज को, तो जब तक ये जगत है तब तक रहेगा, उसके बाद नहीं। इसका उत्तर सीधा ये कि आप जैसा माने आपके लिए ऐसा ही, कोई आपत्ति नहीं। वो रहेगा या नहीं रहेगा इस बात की परवाह न वो देखने वाला करता है और न वो देख पड़ने वाला करता है। वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो तत्व है कि असत्व है, वो सत्य है कि असत्य है, इस बात से न देखने वाले को मतलब है न देख पड़ने वाले को। जो कुछ वो है सो वो है, जो कुछ वो है सो वो है, वो उसका है और वो उसका ही नहीं मतलब है। वो चाहे मानव हो, दानव हो, पिशाच हो, पशु हो, राक्षस हो, आप कुछ भी माने उसको, उसे कोई परवाह नहीं इस बात की कि आप उसे भगवान माने न माने। भगवान आप उस देखने वाले को मुंह में ग्रस्त असुर माने माने, कुछ भी माने, कोई इसमें परवाह की चीज नहीं। वो जो कुछ है अपने में, अपने आप के लिए है, आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं। और जो भगवान उसको देखते हैं उसके अपने हैं, वो आपके लिए नहीं। बल्कि वहाँ की इतना गहरा नाटक व्यापक बात कही भगवान ने, व्यापक बड़ी व्यापक, और वो व्यापक में एक ऐसा संकेत आ गया कि वो संकेत अलग कर देता है भगवान की समता से इस भक्त को। समूहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या महिते तेषु चात्म। ये महिते तेषु चात्म क्या चीज है? वो जब सम है, सारे भूतों में सम है, तब ये अलगाव क्यों? वही मेरे में मही मही उनमें, दूसरे क्यों नहीं उसमें, दूसरे में क्यों नहीं हो? पर है, सब में है, सब में व्यापक रूप से है, सब में तात्विक रूप से है, सब में सत्ता रूप से है, सब में आनंद रूप से है, पर उसमें उसके अपने प्रीतम रूप से है। ये मई थे वे मेरे भक्त जो मुझे भक्ति पूर्वक बसते हैं, वे मेरे में हैं और मैं भी उनमें हूँ। ये भगवान की गीता के अपने वाक्य हैं। इनको आप निर्गुण में लगावे, सगुण में लगावे, कहीं लगावे, भगवान के ये शब्द है। साधु हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय तो हम मदन्यते न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि। ये भगवान विष्णु के अपने शब्द हैं भागवत में। आप कल्पना माने तो कुछ किससे बिगड़ता उगड़ता नहीं। वो साफ कहते हैं कि मैं उनको जानता हूँ, वो मुझको जानते हैं। अपनी जानकारी को भी भगवान सीमाबद्ध कर लेते हैं उस भक्त के लिए। मैं उनको जानता हूँ केवल, और वो केवल मुझको जानते हैं। वो अपने अनंत ज्ञान को सीमित ज्ञान कर लेते हैं उन भक्तों के लिए। मैं उनका और वो मेरे, तो दूसरे नहीं तुम्हारे, तुम दूसरों के नहीं है, पर वहाँ कुछ विशेषता है। इसलिए ऐसे जो भगवान है वो अपने भक्त के, और ऐसे जो भक्त उनके अपने भगवान। तो ये उनके घर विद के बात है, दूसरे का इसमें बोलने का अधिकार नहीं। अरे पति पत्नी अपने घर में रह रहे हैं, दूसरे क्यों उसमें रंगा लगाए? तुम कैसे हो, तुम कैसे? हम जैसे वो जैसा, हम अपने घर में हैं, तुम्हारा इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं। सीधी सीधी बात, वो जिनमें लाया नहीं एक किताब काला चांद गीता, एक किताब है शिशिर कुमार घोष जो ये अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक रहे, जिनको तिलक महाराज ने लिखित रूप से अपना गुरु माना है, लिखित रूप से गुरु माना है, और जो भारतीय राजनीति संसार को एक बहुत बड़े सम्मान नेता, मोतीलाल घोष उनके छोटे भाई थे, ये आजकल जो तुषार कांति है ये बंगाल गवर्नमेंट में, ये उनका पौत्र है। हाँ, तो ये बहुत बड़े विद्वान, इन्होंने एक बंगला में काव्य लिखा है, उस काव्य का नाम है काला चांद गीता। काला चांद माने कृष्णचंद्र, उसने महाराज पांच सखियों का वर्णन है, वर्णन तो सारा का सारी मधुमय है, अत्यंत मधुर वर्णन है, जो बंगला जानते हैं उनको उसका रस आ सकता है, वो किताब मेरे पास है, यहाँ मैं लाया हूँ। तो उसमें एक जगह वर्णन को संक्षेप में कहता हूँ, पांच सखियां, पांचों विभिन्न नाम है, तो पांचों सखियां एक दिन वन में बैठी हुई अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का अन्वेषण कर रही, कहीं खो गए, इधर उधर ढूंढ आई, मिलते नहीं वो, तो उनके लिए वही प्राणाराम है, वही भगवान है, वही परमेश्वर है, वही अपने हैं, वही मालिक हैं, पर वो मालिक वालिक का उन्हें ज्ञान नहीं, वो तो उनके अपने हैं। तो उधर से एक महात्मा निकले, महात्मा बड़े विरक्त मुंडन किए हुए, केश कलाप उनके नहीं, एक कोटी पहने हुए, जीर्ण शीर्ण, बड़े तेजस्वी, उधर से महात्मा निकले। तो इन लोगों ने सोचा अपने मन में कि महात्मा हैं, सिद्ध पुरुष हैं, इनको पता होगा तो ये बता देंगे, थोड़ा पूछ ले। महात्मा के पास जाने का और उद्देश्य नहीं, सब कर्म आ गई एक फल राम चंद्र की हो, दूसरी आकांक्षा नहीं, महात्मा के पास इसीलिए जाना। तो वो गई, जा करके पांचों ने प्रणाम किया और बोली, महाराज आप संत हैं, आपको सब पता है, आप सर्वज्ञ हैं, हमारे श्याम सुंदर, हमारे भगवान कहीं छिप गए हैं, आपने देखा हो तो आप बताइए। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे भगवान? हाँ बोले, हमारे भगवान। तब साधु बोले, तुम तो मालूम होता पगली हो गई। महाराज कैसे? अरे बोले, भगवान यूं मिलते हैं क्या? तुम लोगों ने रेणी बांध रखी है, फूल खोस रखे हैं, ये बढ़िया बढ़िया तुम लोगों ने अपने बाल बना रखे हैं, गहने पहन रखे हैं, माला गूंज रही हो, श्रृंगार किए हुए हो, ऐसे भगवान लगते हैं? विरक्त बनो, हमारी तरह से मूड मुड़वाओ, सारे बाल छटला दो और ये साड़ी वाले उतार करके और कफनी पहन लो और जंगल में रहो, तपस्या करो, शरीर को सुखा दो, तब भगवान मिलेंगे। तो बात तो नहीं ठीक थी, बेजा बात तो है नहीं। तो वो सब की सब सुन करके सहम गई, डर गई, वो आपस में देखने लगी एक दूसरे की ओर कि किस भगवान की बात कर रहे हैं, उनको अपने भगवान का एहसान हो है नहीं। तो देखने लगी कि ये किस भगवान की बात कह रहे हैं, तो आखिर नहीं रहा तो एक ने पूछा, बोले महाराज आप कौन से भगवान की बात कहते हैं? नया प्रश्न आ गया। तो महाराज ने बड़ा सीधा उत्तर दिया, अरे बोले तुम लोग मालूम होता है बिल्कुल मूर्खा अज्ञानी हो, कहीं भगवान 10-20 होते हैं क्या? भगवान तो एक है। बोले हाँ एक तो है, पर जरा बताइए तो आपको कौन भगवान कैसे है? तो बोले भाई, उन भगवान की तुमको प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम्हें सब श्रृंगार कर रही हो, इतने लंबे लंबे केश रख छोड़े तुमने, तिलक लगा रखा, गहने पहन रखे, ये क्यों पहन रखे? तो एक ने कहा कि महाराज, ये जब हमारे श्याम सुंदर कहीं बाहर चले जाते हैं तो इन लंबे लंबे हमारे केशों को हम ये सामने करके उनका काला रूप देखते हैं, तो उस काले हमें कृष्ण दिखाई देते हैं हमारे केशों में, तो हमारा जी उस समय सांत्वना पाता है, अगर हम केशों को मुड़वा दें तो श्री कृष्ण को देखने का आधार न रहे हमारे पास, श्रृंगार नहीं रखते। बोले तुम इनको सजाती क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि सजाना क्या, हम तो जानते नहीं, सजाना किसे कहते हैं ये पता नहीं महाराज हमको, तो हम तो इतना ही जानते हैं कि जब हम इन केसों को यूं नहीं रखते तो श्याम सुंदर कहते हैं आज वैसा क्यों नहीं बनाया, उनकी राजी के लिए हम तो बनाती है, हमें तो पता नहीं। वो अगर कह दें कि तुम मुंडन करा लो, हम प्रसन्न होंगे। अगर वो हंसा आ गई तो हम मुंडन करा लेंगे। हमें तो मुंडन में आपत्ति नहीं और केस रखने में आपत्ति नहीं। तो बोले कि तुमने बढ़िया कपड़े क्यों पहन रखे? तो एक ने कहा एक दिन के बाद और हमने एक घटिया कपड़ा पहन लिया, फटी साड़ी थी मैली। तो श्याम सुंदर बोले कि आज तुमको बड़ा दुख होता है, तुमने ऐसे मैले कपड़े क्यों पहन लिए? तो हमने कहा भाई अच्छा अच्छे अच्छे पहनने। वो कहते कि मैले पहन तो मैं तो मैले ही पहनती। बड़ा माने कपड़ा गहना शरीर के सज्जा इन सब से कोई मतलब नहीं। मतलब है श्री कृष्ण से और कोई मतलब नहीं। जाने मत या गोपियों ममित समुपासते ताभ्याम बिना नम ये पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। तो बोले महाराज बताओ आपके भगवान कैसे? तो बोले कि भाई भगवान 10-20 नहीं होते, भगवान एक है। वो भगवान सबसे परे है, वो निर्गुण निराकार है, सबसे परे हैं। और वैसे वो भगवान सर्वलोक महेश्वर है, सबके मालिक है, सबके स्वामी है। और वो जो अच्छा काम करते हैं उनको वो इनाम देते हैं, जो बुरा काम करते हैं उनको वो दंड देते हैं। वो दंड देने वाले, इनाम देने वाले, सबको शासन में रखने वाले सबके महेश्वर भगवान हैं। तभी हंसे, ठीक है पता लगे आपके दूसरे। हमारे तो चिंता हो रही थी मन में कि आपने कैसे भगवान बता दिए, पर आपके जो ईश्वर भगवान हैं ये सब लोगों के मालिक और दंड देने वाले और ये इनाम देने वाले ये दूसरे। हमारे तो इनाम देने वाले दंड देने वाले नहीं, और हमारे तो सब लोगों के ईश्वर नहीं। तो महात्मा ने पूछा भाई वो तुम्हारे कौन से बताओ तो सही। तो बोली कि हमारे तो अपने घर के हैं, वो दंड क्या हम वो हम इनाम क्या देंगे? घर की चाबी तो हमारे पास, भंडार की चाबी तो हमारे पास, इनाम क्या देंगे? और हमारे कहीं फोड़ा वोड़ा हो जाओ और वो कहीं डॉक्टर को बुला के उसको कटवा दे तो ये दंड है कि ये प्रेम है? वो तो हमें निरोग देखना चाहे तो हमारा अंग कटवा दे तो ये क्या दंड हमारा? ये तो प्रेम है। और रही शासक की बात तो हम तो महाराज राजा के नाम से डर जाए, राज दरबार में कौन जा हमारे? और कहीं कहीं राजा कोई होगा और राजा के कहीं करवर भर्रा होगा तो हमारे स्वामी आप भर जाएंगे, हमें उससे मतलब नहीं। राजा कौन और राजा का लगान क्या और कर क्या, दंड क्या, इनाम क्या, हमें मतलब नहीं। हमें तो मतलब ये है कि वो हमारे हैं। तो हमारे वो श्याम सुंदर कहाँ खो गए उनका पता होगा? आप बताइए, आप वाली दूर नहीं है। आप वाले भगवान जहाँ ऐसी ऐसी बातें कहें कि हमारे भगवान से विरुद्ध पड़े और वैसा काम हम करने लगे तो हमारे भगवान दुखी हो जाए, तो इस भगवान की आवश्यकता हमें नहीं, हमें तो हमारे भगवान को बताइए। तो महात्मा ने पूछा कि अच्छा बताओ भाई तुम्हारे भगवान का स्वरूप क्या है? अब महाराज वो यहाँ भगवान के नवनीत श्याम सुंदर स्वरूप का वर्णन करते करते और आनंद मत होकर नाचने लगी। बाबा जी भी नाच पड़े साथ साथ, बाबा जी की आंखों से आशीर्वाद होने लगे, बोले तुम ही धन्य हो। तो भाई ये बात है कि अपने भगवान से अपने भक्त का मतलब होता है। वो कैसे हैं, क्या हैं, तत्व हैं कि नहीं हैं, सत्य हैं कि नहीं हैं, उनका स्वरूप क्या है, इस बात को वो जाने, वो पहचाने, वो जानने की चेष्टा करे जो तत्व को जानना चाहता है।